हरे कृष्णा। आज का विषय है परी कथाएं। इवोल्यूशन के सिद्धांत बड़ों के लिए परियों की कहानी जैसी है। विज्ञान के विकास में इस सिद्धांत ने तनिक भी सहायता नहीं की है, यह निरर्थक है। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान एक पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग बच्चों के लिए कहानियां लिखने के लिए विख्यात थे। अपनी मनोरंजन कपोल कल्पित कथाओं में उन्होंने बताया कि कैसे हाथी की सूंड आई या कैसे ऊंट की पीठ पर कोमड़ उगा। दूसरी ओर चार्ल्स डार्विन ने विभिन्न जीवों की उत्पत्ति के लिए ऐसे ही मिली जुली कहानियां बताई और उन पर नेचुरल सिलेक्शन वेरियस म्यूटेशन जैसे बड़े शब्दों का जामा चढ़ा दिया। किंतु ध्यान से देखने पर इन सब के पीछे हम देख सकते हैं कि उसकी मनोकल्पना ने कितनी ऊंची छलांग लगाई और कई बार तो उसने किपलिंग को पछाड़ दिया। किपलिंग की मनोरंजन कथाओं और डार्विन द्वारा रची बड़े लोगों के लिए परी कथाओं के कुछ उदाहरण। किपलिंग की कल्पित कथा कैसे बनी हाथी की सूंड। किपलिंग लिखते हैं कि एक समय एक बच्चा हाथी अपनी माँ से दूर भटकता हुआ एक नदी तक पहुंचा। उसने नदी में कुछ पत्थर जैसा पड़ा देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या है उसने अपनी नाक से उसे सूंघने का प्रयास किया। वह पत्थर नहीं अपितु मगरमच्छ था और उसने हाथी की नाक पकड़ ली। दोनों में गुंथम गुंथी होने लगी और खींचते खींचते हाथी की छोटी नाक लंबी सूंड बन गई और तब से हाथी की सूंड लंबी हो गई। आइए डार्विन और किपलिंग की कथाओं में समानताएं देखें। भालू वेल बन गया। डार्विन को समझने में कठिनाई हो रही थी कि वेल कैसे उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि यह एकमात्र स्तनधारी प्राणी है और जलचर ना होकर अपना पूरा जीवन जल में बिताता है। किंतु जब उसने अपने मित्र हिरेने की डायरी पढ़ी तो बुद्धिमान डार्विन के लिए इस पहेली को सुलझाना चुटकियों का काम हो गया। वे लिखते कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के चमत्कार से यह हुआ। उत्तरी अमेरिका में हिरेने ने एक काले भालू को घंटों तक तैरते देखा। वह वेल के समान मुंह फैलाए मछलियां पकड़ रहा था। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे उसका शरीर बदलता गया और अंततः वह वेल जैसा विशालकाय प्राणी बन गया। आइए तथ्य जानने के लिए दोनों प्राणियों की संरचना देखें। नीली वेल का शरीर 100 फुट लंबा और वजन में 1600 क्विंटल होता है। उसकी जीभ का वजन 8 हाथियों के बराबर होता है। एक बार सांस लेकर वह समुद्र में 3.5 किलोमीटर गहराई तक एक घंटे तक रह सकती है। मादा वेल प्रजनन के लिए पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है। उसकी पूंछ एक आश्चर्य है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती और वह बाल रहित रबर के समान इलास्टिक होती है। और कोई भी इवोल्यूशनवादी आज तक समझ नहीं पाया कि इवोल्यूशन द्वारा कैसे उस पूंछ की उत्पत्ति हुई। इवोल्यूशन एक और प्रश्न को नहीं सुलझा पाए, वह है वेल के सिर पर बना छेद जिससे वह 30 फुट ऊपर तक पानी उछालती है। कैसे एक भालू में अचानक वह छेद बन गया। किंतु स्वयं डार्विन के अनुसार पहले जलचर आए और बाद में थलचर, फिर थलचर भालू से जलचर वेल कैसे बने। कुछ वैज्ञानिक इसका ठोस तर्क युक्त और वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। उनके अनुसार मछलियां पानी से बाहर आकर तट पर चलने लगी और पशु में परिवर्तित हो गए और फिर उन पशुओं में से एक भालू पुनः पानी में उतरा और वेल बन गया। इस कहानी से लगता है कि मानो उस समय जल में जीवित रहना भूमि पर जीवित रहने से कम संघर्ष भरा था, जबकि हजारों लाखों अनेक प्रकार के पशुओं का जीवन जिनमें अनेक प्रकार के भालू भी थे पृथ्वी पर सामान्य चलता रहा, क्योंकि कुछ भालुओं को अपने जीवन परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा। और वास्तव में कैसे उन्होंने स्वयं को परिवर्तित किया और एक पूर्ण वेल बनने तक उन्होंने अपना निर्वाह कैसे किया। जब परी कथाओं में मेंढक को राजकुमार बनता हुआ दिखाया जाता है तो उसे कल्पना माना जाता है, किंतु जब भालू वेल में परिवर्तित होता है तो उसे एवोल्यूशन माना जाता है। और जिराफ कैसे बना। पशु में सबसे लंबे पशु जिराफ की उत्पत्ति को समझाने के लिए इवोल्यूशनवादी लाखों वर्षों पूर्व अफ्रीका के जंगलों में घटी घटना बताते हैं, जिसे किसी ने नहीं देखा है। घने हरे भरे जंगलों में सुंदर हिरण आनंद से विचरण करते थे, किंतु कुछ समय पश्चात निरंतर अकाल के कारण भूमि की घास समाप्त होने लगी और हिरणों में भोजन को लेकर संघर्ष होने लगा। पेट भरने के लिए हिरणों ने वृक्षों की निचली पत्तियां खानी आरंभ की और जैसे जैसे निचली पत्तियां समाप्त होने लगी, वे अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर ऊपर वाली पत्तियां खाने लगे। जो जो नीचे की पत्तियां समाप्त होती गई, त्यो त्यो उन्हें ऊपर की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा और जो ऐसा कर पाए वे ही बचे और अन्य मर गए। अस्तित्व की इस होड़ में बचे हुए हिरण 20 फुट लंबे हो गए, उनके शरीर का रूप बदल गया और उनकी त्वचा का रंग भी बदल गया। यह दो मंजिला नया प्राणी जिराफ के नाम से जाना जाने लगा। यदि ऐसा होता तो अफ्रीका के जंगलों में छोटी गर्दन वाले सभी प्राणी मर गए होते, किंतु अभी हम देखते हैं कि हिरण की विभिन्न जातियों के प्राणी और जिराफ एक साथ अफ्रीका के जंगलों में सुख से विचरण कर रहे हैं। डार्विन एंजाइम पुस्तकों के लेखक लूथर डी सैंडरलैंड डार्विन की जिराफ कहानी में त्रुटियां बताते हुए लिखते हैं, जिराफ के कुछ पूर्वजों की गर्दन और पैरों की हड्डियां लाखों वर्षों की अवधि में बड़ी होती गई। यदि यह सही है तो अभी हमें या तो हिरण और जिराफ के बीच के प्राणी दिखने चाहिए या उनके जीवाश्म, किंतु ऐसे कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इवोल्यूशन के लिए जिराफ के शरीर में विद्यमान रक्तचाप प्रणाली को भी समझाने में अक्षम है। इस प्रणाली के द्वारा इतना उच्च दबाव निर्मित होता है कि रक्त 20 फुट ऊपर जिराफ के मस्तिष्क तक पहुंचता है, किंतु अगले ही क्षण जब जिराफ पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो यह उच्च रक्तपात तुरंत गिर जाता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त भरकर उसे हानि ना पहुंचा पाए। इस प्रकार डार्विन के अनुसार पेंगुइनों ने जब अपने सामने फैला आकाश देखा तो वे प्रलोभित हो गए और धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए लंबी गर्दन वाले बत्तख, चील, हंस, चिड़िया, कोयल, कठफोड़ा, तोता जैसे पक्षी बन गए। कैसी लगी ये कहानियां? क्या आप कभी विश्वास करेंगे कि सड़क पर दौड़ती एक मोटरसाइकिल लाखों वर्षों में अपने आप जेट हवाई जहाज बन गई और आकाश में उड़ने लगी? जब भी किसी सिद्धांत की खोज होती है तो उसे विज्ञान होने का दावा किया जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात उसी सिद्धांत को बचकाना कहकर निरस्त कर दिया जाता है। कब तक तथाकथित वैज्ञानिक इस प्रकार की बेतुकी बातों को विज्ञान के नाम पर थोपते हुए आम जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे, तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।